राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदा राधा। तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय
जनवल्लभ गिरिवर धारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी,
यमुना तीरावन चारी,
यमुना तीरावन चारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय
महाअभिषेक उत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। अभिषेक के बाद भगवान श्री कृष्ण की लीला के ऊपर श्रवण करेंगे और तत्पश्चात भगवान की आरती होगी और आरती के बाद सबके लिए महाप्रसाद होगा। अर्चन भक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है। तो बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक यहाँ पर हम सब लोग ने देखा और अपने हाथों से किया। कहते हैं कि अभिषेक करने की बात दूर रही, जहां पर अभिषेक हो रहा है उससे कई किलोमीटर दूर यदि कोई व्यक्ति अभिषेक शब्द सुन लेता है कि वहां पर टेरेस में अभिषेक हो रहा था, अभिषेक शब्द सुनने पर उनके हजारों हजारों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और जब व्यक्ति अभिषेक को देख ले और अपने हाथों से भगवान का अभिषेक कराए, तब तो क्या कहना है, अभिषेक की बहुत महिमा है। तो लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण बहुत कम वही के हैं, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की एक लीला श्रवण करने का और कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का श्रवण करेंगे जो भगवान ने 6 दिन की उम्र में की थी। श्रीमद् भागवतम में यह लीला भक्तों के लिए बहुत उपाध्याय है और इस लीला में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की कृपालुता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं इस लीला में हमें जानने मिलता है। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के इसी गुण से सुखदेव गोस्वामी की समाधि टूट गई। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म समाधि में लीन थे, परंतु जैसे ही उन्होंने इस लीला के बारे में सुना तो वे ब्रह्म समाधि से हटकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। तैसे ही भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला 6 साल की उम्र में उन्होंने संपन्न की और वो है पुतना वध लीला। भगवान श्री कृष्ण ने 6 साल नहीं 6 दिन में, भगवान श्री कृष्ण केवल 6 दिन के थे, 6 दिन की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ी राक्षसी का वध किया। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में यह पूतना वध की कथा है। पूतना वध की कथा सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, नंदपथी वचम शोरेन न मृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पाद आगम शंकित। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेकर ही वसुदेव जी ने उसे गोकुल में भेज दिया। गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सारा गोकुल आनंद और उल्लास में था। सब लोग सुखी थे, सब लोग आनंदित थे और नंद बाबा और यशोदा मैया के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। उस समय नंद बाबा ने सोचा कि यदि कंस के सिपाही या कंस यहां पर आ गए तो यहां पर उत्पात मचा सकते हैं, इसलिए कंस और कंस के सिपाही यहां पर न आए, इसके लिए हमें ही चलकर कंस को कर दे देना चाहिए। तब नंद बाबा कंस को कर देने के लिए अपने साथ कई गोपों को लेकर कई सारी बैलगाड़ी में बहुत सारे साज सामान रखकर मथुरा जाने के लिए निकले। नंद बाबा मथुरा में गए हैं और मथुरा में जाकर कंस को सारा कर टैक्स दे दिए हैं। और उस समय नंद बाबा की वसुदेव जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। वसुदेव जी की भी नंद बाबा से मिलने की बहुत इच्छा थी, परंतु वसुदेव जी नंद बाबा को अपने घर पर नहीं बुलाए। नहीं बुलाने का कारण यह था कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो गए कंस के कारागार से, उस दिन से कंस वसुदेव जी के पीछे अपने आदमी को लगाया हुआ था। वसुदेव जी से कौन मिलता है, कौन आता है, क्या होता है, सब ध्यान रखेगा। और वसुदेव जी एकमात्र वसुदेव जी ही जानते थे कि यह कृष्ण हमारा पुत्र है, देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। तो वसुदेव जी नंद बाबा मथुरा में आए हैं और वसुदेव जी जानना चाहते हैं कि गोकुल में क्या स्थिति है, सब लोग खुश तो है ना। परंतु नंद बाबा को अपने घर पर नहीं बुला सके। वसुदेव जी स्वयं चलकर नंद बाबा के पास गांव में एक जगह पर गए और भागवत में वर्णन आया है वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को भी लेकर नहीं गए, अकेले मिलने गए। वसुदेव जी अकेले मिलने गए, कारण क्या है? आचार्यगण बताते हैं कि यदि वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को लेकर गए होते तो देवकी स्त्री है और स्त्री के पेट में कोई बात नहीं रहती है। वसुदेव जी ने सोचा कि यदि ये नंद बाबा को बता देगी कि कृष्ण हमारा पुत्र है तो फिर नंद बाबा का कृष्ण से प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए जिस दिन से युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया है उस दिन से स्त्रियों के पेट में बात नहीं रहती है। वसुदेव जी ने यह सोचा। पता है समाज में हम देखते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि देखो फलाने भाई ने ये किया, उसने ये किया, लेकिन किसी को बताना मत। फिर दूसरी स्त्री से कहती है उसने ये किया, फलाने भाई ने ये किया, लेकिन दूसरे को बताना मत। फलाने भाई ने ये किया, दूसरे किसी को बताना मत, बताना मत, बताना मत करते करते पूरे गांव को बता देती है। स्त्रियों का स्वभाव ब्रह्मा जी की ये प्रकृति है, ये रचना है। स्त्रियों का कोई दोष नहीं है, भगवान की रचना ही ऐसी है, क्या करें। इसलिए वसुदेव जी देवकी को अपने साथ लेकर नहीं गए, अकेले गए हैं नंद महाराज से मिले। जब नंद महाराज और वसुदेव जी मिले तो वसुदेव जी ने डायरेक्ट यह नहीं कहा कि कृष्ण ठीक तो है ना। यदि डायरेक्ट कह दिया हो तो थोड़ा बहुत शक हो जाता नंद बाबा को, इसलिए वसुदेव जी घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं कि आपकी जितनी भी गैया है सब ठीक तो है ना। यदि गैया ठीक है तो दूध भी ठीक मिल रहा होगा, और यदि दूध ठीक है तो मेरा लड़का कृष्ण दूध ठीक से पी रहा होगा, घास इत्यादि ब्रज वृंदावन में ठीक से तो हो रहा है। इस प्रकार से बहुत प्रश्न पूछे और यह समझ में आ गया कि कृष्ण बहुत सुख में है, आनंद में है। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा कि हे नंदराज, आप जल्दी वृंदावन में वापस लौटिए, क्योंकि वृंदावन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ उत्पात हो रहा है, कुछ उत्पात होने की शंका मेरे मन में लग रही है, इसलिए आप तुरंत चले जाइए। तो वसुदेव जी के कहने पर नंद महाराज तुरंत ही वहां से निकल गए। और नंद बाबा यहां पर कह रहे हैं नंद पथी वचन शोरे। नंद महाराज रास्ते पे बैलगाड़ी पे सवार होकर जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि शौरी के द्वारा, वसुदेव जी के द्वारा जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि ब्रज वृंदावन में कुछ उत्पात हो रहे हैं। वचन न मृषेति, वसुदेव जी के वचन मृषा कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तब देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसके मुख से कभी झूठ नहीं निकलेगा। वसुदेव जी के मुख से निकल गया है कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं तो निश्चित हो ही रहा है। इसलिए नंद बाबा बहुत डर गए, चिंता होने लगी। और चिंता होने लगी तब नंद बाबा ने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरिम जगाम शरणम, वे हरि के शरण में चले गए। हरि के शरण अर्थात भगवान की शरण ग्रहण की। जीवन में जब दुख होता है, चिंता होती है, शोक होता है, तब और किसी की शरण में न जाकर हरि की शरण में जाना चाहिए। यहां पर वसुदेव जी और किसी के शरण में नहीं गए, हरि शरणम जगाम कहते हैं, हरि की शरण में गए। हरि के शरण में जाने के बहुत अर्थ हैं। वसुदेव जी भगवान विष्णु की उपासक थे, भक्त थे, उनका विग्रह अपने घर पर रखते थे। तो इसका एक अर्थ यह है कि वसुदेव जी अपने घर पर जो मंदिर था और मंदिर में जो डिटीज थे उनके शरण में गए, उनको याद किया। और दूसरा अर्थ सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वे हरि के अर्थात कृष्ण के पास चले गए। कृष्ण भी हरि ही तो है, तो भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत जल्द जा रहे हैं कि गोकुल में कोई उत्पात तो नहीं हो रहा है। वसुदेव जी रास्ते से जा रहे हैं और यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में गोकुल में उत्पात शुरू हो गया था। क्या हो रहा था गोकुल में, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चकार निघ्नती पुर ग्राम व्रजादिषु। कहते हैं कि पूतना नाम की एक राक्षसी ब्रज वृंदावन में आ चुकी थी। कौन थी, किसके द्वारा भेजी गई थी, तो कहते कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई थी। कंस बहुत चिंता में था, जब आठवां पुत्र चला गया और पुत्र के बदले में कन्या ने जन्म लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है, उस दिन से कंस बहुत चिंतित था। तो कंस चिंतित होकर अपने सिंहासन पर बैठा था। उस समय कंस के मंत्रियों ने मंत्रणा दी कि प्रभु स्वामी सरकार चिंतित क्यों हो, उन्होंने यही कहा है ना कि आपको मारने वाला प्रकट हो चुका है। तो चार दिन पहले वो देवी ने कहा है कि आपको मारने वाला प्रकट हो चुका है, तो महाराज चार नहीं, थोड़ा सेफ साइड चलते हैं, आठ दिन पहले जितने भी बालकों का जन्म हुआ है सबको मार डालते हैं, उनमें से एक होगा मर जाएगा। कंस ने कहा वाह वाह मंत्री वाह, क्या मंत्रणा दी है। अब ऐसे लोगों के मंत्री भी वैसे ही होते हैं, कंस के मंत्री कंस की ही तरह होते हैं। कंस का अर्थ होता है एक कसाई, जो शब्द है आज ही मैं मंदिर से जब लौट रहा था तो वहां पर दो कसाई खाने हैं, वहां पर 15-20 बकरे खड़े थे और 3-4 जल्लाद कसाई खड़े थे और ढूंढ रहे थे कौन से बकरे को काटा जाए। मैं कार में बैठा था, मैं देख रहा था, कार चल रही थी, मैंने देखा कि ढूंढा इसको पकड़ो इसको इसको, अंत में एक बकरे का कान पकड़ लिया और कान पकड़कर खींचकर उसे उस दुकान के अंदर पीछे के भाग में उसे लेकर जा रहे थे। मन में यही सोचा कि क्या स्थिति हो गई उसकी, निर्लज निर्दयी क्रूर हृदय वाले, जिसका पत्थर हृदय होता है वे लोग पशुओं की हत्या करते हैं। वास्तव में जो आत्मा हमें भी है वही आत्मा पशुओं में भी है। जो पंडित होते हैं, पंडिता समदर्शिन, वो सब में समान, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, क्या श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनी चैन श्वका श्वपाके पंडिता समदर्शिन। जो भक्त होते हैं वो ब्राह्मण में, साधु संत में, या कुत्ते में, या हाथी में, या बिल्ली में, या चूहे में, सभी के हृदय में आत्मा का दर्शन करते हैं। वे सब के प्रति सम होते हैं, परंतु ये क्रूर ये लोग नहीं जानते हैं कि जीव की क्या महिमा होती है। कंस, ये कसाई शब्द कंस से बना है। कंस का अर्थ ही होता है निर्दयी। तो कंस, वह निर्दयी कंस ने कहा कि ठीक है, सभी बालकों का 8 साल 8 दिन के पहले जितने बालकों का जन्म हुआ है सबको मारा जाए। उसी समय वहां पर कंस की बहन आएगी जिसका नाम था पूतना और उसका एक नाम था बकी, क्योंकि वे बकासुर की बहन थी। वहां पर आई और कहा कि महाराज, यदि आप सैनिकों को ब्रज में भेजोगे तो ब्रज में बहुत उत्पात हो जाएगा, हल्ला मच जाएगा और सब लोग अपने अपने लड़कों को लेकर भाग जाएंगे। एक काम करो, मैं तो रूप बनाना जानती हूं, अच्छा रूप लेकर ब्रज में जाओगी और एक एक लड़के को पकड़ पकड़ कर मार डालूंगी, खा जाऊंगी। कंस ने कहा यह ठीक बात है। तब कंसेन प्रहिता घोरा, कंस ने कहा कि तुम जाओ और गोकुल में जितने भी बालक हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको मार डालो, सबको काट डालो, सबको खा जाओ। तब कंसेन प्रहिता, कंस के कहने पर वह घोर पूतना, पूतना घोर थी और बाल घाती नहीं, बालकों का वध करने वाली थी। वास्तव में बालकों को कभी नहीं मारना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम जड़म, स्त्री को, बालकों को कभी नहीं मारना चाहिए, परंतु ये स्पेशल बालकों की का खून पी पी कर उसे मारती थी। शिशुम चकार निगनंती पुर ग्राम व्रजादिशु, कंस के कहने पर वह पूतना निकल गई, ब्रज वृंदावन में आ गई और वृंदावन में आकर ढूंढ रही थी शिशु को मारने के लिए। जैसे ही पूतना ब्रज वृंदावन में आई तो आचार्यगण लिखते हैं कि पूतना डायरेक्ट कृष्ण के पास आई। कृष्ण से पहले उन्हें पूतना ने किसी को नहीं मारा, क्योंकि भगवान की योग माया से उसे कोई दिखा ही नहीं, डायरेक्ट ब्रज में नंद बाबा के घर पर आ गई। तो जब सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे कि पूतना चलते चलते डायरेक्ट नंद बाबा के घर पर, जहां पर कृष्ण झूले में झूल रहे हैं, पलने में झूल रहे हैं, उस शिशु बालक कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के घर पर आ गई, तो परीक्षित महाराज कांप गए, डर गए कि बाप रे बाप, अब तो ये मार डालेगी, अब तो ये पूतना कृष्ण और कृष्ण के साथ गोकुल में जितने भी बालक रह रहे हैं उसे मार डालेगी। क्योंकि परीक्षित महाराज हमारी तरह नहीं सुन रहे थे, पूरे मन और बुद्धि को आविष्ट करके उस कथा में प्रवेश कर जाते थे। जैसे कथा सुनते थे तो वे भी गोकुल में ही खड़े रहकर देख रहे थे, और हम तो बैठे यहां पर हैं, परंतु मन और बुद्धि घर पर है। कुछ लोगों की मन और बुद्धि प्रसाद में है, कब ये प्रभु बंद करेंगे और प्रसाद खाएंगे, 9 बजे तो बंद करने का कहा था। परंतु परीक्षित महाराज बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे, इसे श्रवण कहा जाता है। तो वे डर गए, कांप गए कि बाप रे बाप, अब क्या होगा। सुखदेव गोस्वामी ने देख लिया कि परीक्षित डर गया है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कथा को स्टॉप करके एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परीक्षित डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न यत्र श्रवणादिनी रक्षक नानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र हि। हे परीक्षित, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुण रूप लीला का कथा और कीर्तन नहीं होता है, वहां ही राक्षसों का वास होता है, वहां ही राक्षस लोग दूसरों का वध कर सकते हैं। और पॉजिटिव में यदि सुना जाए तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन गुण रूप लीला की कथा होती है, वहां पर राक्षसों का कोई बस नहीं चलता है, वहां राक्षस हार जाते हैं। ये सत्य बात है। जिसके घर पर भगवान श्री कृष्ण के की कथा होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप होता है, वहां पर किसी भी राक्षसों की शक्ति नहीं चलती। जहां कथा कीर्तन नहीं होता है वहां ही राक्षस असुर भटकते रहते हैं और दूसरों को मारते रहते हैं। इसलिए यदि राक्षसों से बचना है, माया से बचना है, तो भगवान की कथा और भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस हमें छोड़ेंगे नहीं। राक्षस तो परेशान करते हैं, यहां तक देवी देवता भी परेशान करते हैं, मनुष्य भी परेशान करते हैं, परंतु भगवान की जो भक्ति करते हैं उसे देवी देवता कभी परेशान नहीं करते। भाव यह है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का कथा और कीर्तन होता है वहां पर किसी भी राक्षसों का साया नहीं होता है। इसलिए राक्षसों से बचना है तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यद विभेति स्वयं भयम् आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन। सुध गोस्वामी तो यहां तक कहते हैं कि एक बार भी विवश होकर जबरदस्ती भी भगवान का नाम लिया तो उसे वह संसार के सभी भयों से मुक्त हो जाता है। राक्षसों की बात क्या करें, सभी भयों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान एक ऐसे व्यक्ति है जिसे भय भी भयभीत हो जाता है, भय भी काम जाता है भगवान के सामने। तो हे परीक्षित, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राक्षसों का साया तो वहां होता है जहां कथा कीर्तन नहीं होता है, और ब्रज वृंदावन में तो 24 घंटा भगवान की लीला की ही चर्चा, भगवान के नाम की कथा कीर्तन होता है। इसलिए यहां पर पूतना भले आ चुकी है परंतु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इतना कह के सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हैं। सा खेचरिये कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम। एकदा एक समय की बात, पूतना नंद गोकुल में आ गई। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। वे पूतना गोकुल में आई है तो कैसा रूप बनकर आई है? कहते हैं योषित, योषित्वा माययात्मानं, अपनी माया से मायावी थी। और खेचरी, खेचरी का अर्थ होता है खम, का अर्थ होता है आकाश, और चरी का अर्थ होता है विचरण करने वाली। ये पूतना में ऐसी शक्ति थी कि वह आकाश में उड़ सकती थी। तो मथुरा से आकाश के मार्ग में गोकुल में आई, फिर वे चलने लगी। और कैसा रूप बनाया था? योषित्वा, बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया था माया के द्वारा। बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी। अब उसके रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, कैसा रूप था? कहते ताम केश बंध, सबसे पहले वे बाल में शैंपू लगा कर आए थे। बहुत सुंदर बाल, रेशमी बाल थे और खुले हुए बाल थे, बिखरे हुए। आज भी संसार में जो खुले बाल रखते हैं वो पूतना से कम नहीं है, सब पूतना है। स्त्रियों को कभी अपना बाल खुला नहीं रखना चाहिए, आज तो फैशन है। मैं देखता हूं कि बड़े बड़े लोग, छोटे लोग नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोग शादी में पार्टियों में जाते हैं तो बाल बिल्कुल खुला होता है, सेम पुतना, पुतना वैसी ही दिखती है। क्योंकि लिपस्टिक करके आई थी, आगे कहेंगे, बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, गहना पहना था, परंतु बाल खुला था। तो आज जो लोग बाल खुला रखते हैं वे और कोई नहीं, वे पूतना ही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ताम केश, उनके केश खुले हुए बिखरे हुए थे। और मान लीजिए उस केश में कुछ फूल भी लगाया होगा, और सुंदर वस्त्र पहना था, बहुत सुंदर उनकी कमर थी। आगे कहते हैं वल्गु स्मित, बहुत मधुर मधुर मुस्कान कर रही थी। और हरंती वनिताम व्रजो को साम, और व्रज में रहने वाले सभी के मनों को हर रही थी। सब लोग कह रहे थे वाह कितनी सुंदर है। होता है स्त्रियों में बाहर से कुछ और, अलग से कुछ और होता है। और उसमें भी जब ये व्रज में आई तो कहीं से कमल का फूल तोड़ लिया और फूल को घुमा घुमाते हुए ब्रज वृंदावन में गोकुल में आ रही थी। कमल के फूल को घुमाते हुए बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार मेकअप लिपस्टिक लगाकर आई थी, आंखों में काजल। बिल्कुल आज के जो लिपस्टिक लगाने वाले, आंखों में काजल करने वाले, कृष्ण के लिए ये सब हो तो बहुत अच्छी बात है। ये सब जितनी भी सुंदरता है, जितने भी मेकअप है, अलंकार श्रृंगार, ये सब कृष्ण के लिए होने चाहिए। परंतु हमारा नाम हो जाए, हमें कोई वाहवा करे, इस प्रकार से यदि कोई श्रृंगार करते हैं तो वे पूतना की तरह दिखते हैं। बहुत सुंदर रूप बनाकर आई, हाथ में कमल था, व्रज के लोगों को लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी है, और लगता है ये लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए आई है, कृष्ण के मिलने के लिए आई है। सब लोग उसे लक्ष्मी मानकर उसको आदर देने लगे, प्रसन्न होने लगे। वाह, हमारे गांव में तो इतनी सुंदर आज तक नहीं देखा। सब लोग प्रसन्न हो गए और अपने रूप से सबको मोह रही थी, और इतना मोह रही थी, इतना मोह रही थी, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सका कि आप कौन हो, कहां से आई हो, कोई नहीं कर सका। डायरेक्ट वृंदावन गोकुल में आकर नंद बाबा के घर में घुस गई, कोई रोक नहीं सका। इतनी सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी दिख रही थी, कौन रोके। अब जो कुरूप होते हैं उसे तो सब लोग रोक देते हैं कि कहां जाना है। सुंदर वस्त्र पहने हो तो उसे कोई नहीं रोकते हैं, इसलिए प्रचारकों को बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। कहते बाल गृहस्थ तत्र विचन्वती शिशुन यदीच्छया नंद्र गृहे सदंतकम्। अपनी इच्छा से यदीच्छया, यहाँ पर आचार्य गण कहते हैं कि यत माने भगवान की इच्छा से पूतना डायरेक्ट नंद बाबा के घर पर आ गई। भगवान की इच्छा ऐसी कैसी हुई कि मेरे ही घर में आए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि ये किसी के घर पर चली गई तो उसे मार डालेगी, उससे अच्छा है मेरे ही पास आ जाए। तो यद इच्छया, भगवान की इच्छा से पूतना डायरेक्ट भगवान के पास ही आई। बालम प्रतीक्ष अग्नि रुतेजसम ददर्श तुपे अग्निमिवाहितम भसी। वे बाहर से पूतना बहुत अच्छी लगती थी, परंतु अंदर से दूसरों को मारने वाली थी। कैसे, सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते हैं, जैसे राख होती है, राख के अंदर अग्नि जो होती है अंगारा बहुत जलता हुआ होता है, जलते हुए अंगारे के ऊपर राख जम जाती है तो बाहर से लगता नहीं है, बाहर से लगता है शांत हो गया, परंतु उस पर थोड़ी भी हवा डाला जाए या राख को हटाया जाए तो उससे अंगारा प्रकट हो सकता है जो दूसरों को जला देता है। वैसे पूतना बाहर से बहुत अच्छी थी, परंतु अंदर से अंगारे के समान थी, दूसरों को मारने वाले, दूसरों की हत्या करने वाली थी। विबुध्यताम बालक मारी काग्रहम चरा चरत्मा निमेलिते क्षणम। भगवान पूतना के सामने जब देखे, भगवान श्री कृष्ण तो चरा चरात्म चर और अचर सभी जीवों के हृदय में रहने वाले हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूतना के बारे में जान गए। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, सभी जीवों के बारे में जानते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदि दिशे। भगवान सबके हृदय में है, पूतना के भी हृदय में थे, वे जान गए क्यों आई। इसलिए उन मिली ते क्षण भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को जैसे ही देखा अपने घर पर, और घर के द्वार में यशोदा और रोहिणी दोनों थी, परंतु पूतना के इतने सुंदर रूप को देखकर वे उसे रोक ही नहीं सके। पूतना डायरेक्ट भगवान जहां सो रहे थे वहां चली गई, और कृष्ण ने जब पूतना को देखा तो देखते ही कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली तो प्रश्न होता है, कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद की। श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, सभी लीला के एक एक मोड़ पर आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सोच सोच कर मंतव्य दे देकर बहुत कुछ लिखा है, और उसमें श्रेष्ठ वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर इस बात के ऊपर लिखते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण की लीला रचित श्रीमद् भागवत के ऊपर जो टीका लिखे हैं, उस टीका का नाम है सुबोधिनी, बहुत सुंदर टीका है। श्री प्रभुपाद जी भागवत के प्रथम स्कंद में कहते हैं कि वल्लभाचार्य की टीका पढ़नी चाहिए। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण ने क्यों आंखें बंद कर ली। बहुत सारे 19 भाव है, यदि आप याद रख सकते हो तो रखना चाहिए। 19 कारण भगवान श्री कृष्ण के आंख बंद करने के 19 कारण है, जानना है। सबसे पहला कारण ये पूतना जो है अविद्या है। पूतना अविद्या का स्वरूप है। भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है। अब जहां पर भगवान होते हैं वहां अविद्या कभी नहीं हो सकती है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जैसे सूर्य के सामने कभी अंधेरा टिक नहीं सकता है, वैसे कृष्ण के सामने अविद्या कभी टिक नहीं सकती। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं आंख खुली रखूंगा तो पूतना मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। तो बिचारी आई है इतनी मेहनत करके, तो कुछ देर तो टिकाना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। खुली रखी होती तो पूतना साफ हो गई होती। तो पूतना को कुछ समय तक वहां पर लाभ देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पहला भाव। दूसरा भाव दे रहे हैं, पूतना का अर्थ होता है पूतम अपि नयति इति पूतना। पूतम, पूतम का अर्थ होता है पुत्र, छोटे बालक। अपि नयति, जो छोटे छोटे बालों का अपहरण कर लेती हैं, उसे मार देती हैं, उसे पूतना कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये पूतना छोटे छोटे बालकों का अपहरण करती हैं, उसे मारती हैं, ऐसी राक्षसी का, ऐसे पापियों का तो कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। ये सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण 6 दिन के हैं, परंतु 6 दिन के होकर भी देखिए क्या क्या सोच रहे हैं कि ये पापी का मुख देने से, देखने से तो अच्छा है आंख बंद करके सोया जाए निद्रा। दूसरा भाव। तीसरा भाव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके अपने ध्यान में देखने लगे कि इस पूतना ने इस जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए हैं या नहीं, या पूतना ने अगले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए हैं या नहीं। अभी तो मुझे मारने के लिए आई है, चलो अभी उसकी मति बिगड़ गई है, परंतु इसके पहले उसके द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं या नहीं, भगवान आंख बंद करके ध्यान में देखने लगे। यदि एक भी अच्छा कार्य किया है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, परंतु उसके लिस्ट में कोई अच्छे कार्य नहीं मिलेंगे तो इधर ही उसे मार डालूंगा। इसलिए यह देखने के लिए भगवान आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए कि पूतना ने अगले जन्म में कुछ अच्छा किया है नहीं। ये तीसरा भाव है। चौथे भाव का वर्णन श्रीपाद वल्लभाचार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसी मां का दूध मैंने कभी नहीं पिया, ये पूतना जैसी मां का दूध मैंने कभी नहीं पिया। जैसे दवाई कड़वी होती है तो उसे आंख बंद कर ली जाती है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया का तो दूध बहुत बार पिया था, परंतु ये पूतना जो है अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगाकर आई थी। तो भगवान ने सोचा कि मैया यशोदा का मधुर मीठा दूध तो मैंने बहुत पिया है, परंतु ये साली कड़वी दवाई पिलाने के लिए आई है। इसलिए अब बालक जैसे होते हैं ना कि जब कड़वी दवाई पीनी होती है तब आंख बंद कर लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी बालक ही हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसी मां का दूध पीना तो बहुत कड़वा है। ये सोचकर भगवान ने आंख बंद कर ली, आंख बंद करके दूध पी लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के आंख बंद करने का यह चौथा कारण। पांचवा कारण बताते हैं कि भगवान के अंदर अनंत जीवों का वास है। भगवान के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं। तो भगवान के अंदर जितने भी जीव हैं, सभी जीवों ने सोचा कि अब तो हम गए, अब गए, जैसे ही कृष्ण ये पूतना के स्तन का दूध पिएंगे हम सब का सफाया हो जाएगा, हम सब लोग अंदर मर जाएंगे। तब भगवान ने आंख बंद करके सबको कहा कि भाई टेंशन मत लो, मैं नहीं पीने वाला हूं, यदि पी भी लिया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर रहने वाले जीव पूतना को देखकर कांप गए कि अभी कृष्ण पूतना का दूध पी जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो उस जीवों को सांत्वना देने के लिए भगवान ने आंख बंद करके अंदर ध्यान किया कि डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंख बंद कर ली। देखिए आचार्य गण की दृष्टि कहां तक पहुंचती है, कितने कितने भाव निकालते हैं। छठा भाव क्या है, वल्लभाचार्य जी कहते हैं, भगवान सोचे, बहुत सुंदर भाव है, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मथुरा से गोकुल में मक्खन और दूध और दही खाने के लिए आया है। मथुरा छोड़ दिया, गोकुल में आया दही दूध और मक्खन खाने के लिए, और ये मथुरा से यहां पर आई मुझे विष पिलाने के लिए। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ये विष मेरे काम का नहीं है, ये विष शिवजी के काम का है। अब मैं तो केवल मिश्री खाता हूं, मक्खन दूध दही छाछ पीता हूं, विष विष खाना ये मेरा काम नहीं है। आगे भी आएगा जब भगवान श्री कृष्ण, अब दो तीन श्लोक के बाद इसका वर्णन है, लेकिन मैं आपको कह दूं, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन से वो विष पिया, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुषा रोष के साथ वो विष पिया। तो रोष जो है शिव जी का एक नाम है, रोष, तो इसका अर्थ हुआ कि रोष के साथ भगवान, रोष का एक अर्थ क्रोध भी होता है, तो एक अर्थ ये भी हुआ कि कृष्ण ने क्रोध के साथ पिया। परंतु आचार्य गण सनातन गोस्वामी कहते हैं रुषा रुषा शिव जी का एक नाम है, इसका अर्थ है कि कृष्ण ने शिव जी के साथ विष पिया। कृष्ण ने कहा विष विष आप पी लो, दूध दूध मैं पी लेता हूं। पूतना दूध स्तन के ऊपर विष लगाने लगाकर आई थी, तो दूध और विष दोनों निकल रहा है। तो रुषा शिव जी को कहा कि विष पीना भाई आपका काम है, दूध पीना मेरा काम है। भागवत के अष्टम स्कंद में भी आया है, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से जब विष निकला तो देवताओं ने सोचा कि क्या करे क्या करे। भगवान ने कहा वहां कैलाश में जाओ, शिव जी के पास जाओ, मैं तो दूध दही मक्खन मिश्री खाता हूं, ये सब शिव जी का काम है। शिव जी गए, शिव जी के पास गए, गाते हैं हमारे गुजरात में, शंभु शरणे पड़ी, शंभु शिव जी के शरणों में पड़कर देवताओं ने प्रार्थना किया, कृपया करके आप हमारे दुख को हर लीजिए, कष्ट का आप हो, हमारे कष्ट को दूर कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। शिव जी ने भगवान का नाम लेकर, कहते हैं राम नाम के प्रभाव से शिव जी ने वो विष तो पिया, परंतु वो विष शिव जी को कुछ नहीं कर पाया। और कहते हैं शिव जी के विष पीने में जो बूंद नीचे गिर गई, और वही बूंद वही विष कुछ विष बिच्छू ने सर्प ने ये सब कुछ कुछ मात्रा में धारण किया, इसलिए आज भी सर्प की जितनी भी योनि है सब जहरीली है, बिच्छू भी जहरीले होते हैं। तो प्रश्न होता है शिवजी ने यह नीचे क्यों छोड़ दिया, शिवजी को बराबर अंजलि बांधने नहीं आया होगा, शिवजी असावधान होंगे। शिवजी जब विष पी रहे थे समुद्र से तो कुछ यहां हमारी तरह खड्डा हो गया होगा कि गिर गया होगा, नहीं शिवजी असावधान नहीं थे, शिवजी ने जान बूझ कर वो विष के कुछ बूंदों को गिराया संसार को दिखाने के लिए कि भाई देखो ये कितना भयावह है, मैं जिस विष को पिया हूं उसकी बूंद भी यदि कोई पी लिया तो सर्प की योनि ही जहरीली हो गई, बिच्छू की योनि जहरीली हो गई। संसार के लोगों को विष का प्रभाव दिखाने के लिए छोड़ दिया। तो यहां पर वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली, शिव जी को कहा कि महाराज आप विष को आप पी लीजिए, दूध को मैं पीऊंगा। इस प्रकार से श्रीपाद वल्लभाचार्य छह भाव देते हैं, और उसी की परंपरा में एक बहुत सुंदर बहुत अच्छे भक्त हुए जिसका नाम था हरीशूरी जी। हरीशूरी जी बहुत सुंदर दशम स्कंद के ऊपर टीका लिखे हैं, वे सातवां भाव देते हैं भगवान ने विष क्यों पिया। अब हरीशूरी जी का भाव बहुत अटपटांग होता है, उसे समझ में यदि आ गया तो बहुत आनंद मिलता है। तो सातवां भाव हरीशूरी जी कहते हैं कि भगवान के नेत्रों पर सूर्य और चंद्रमा रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा रहते हैं भगवान के नेत्रों के ऊपर, तो वे सूर्य और चंद्रमा दोनों ने सोचा कि अब कुछ ही देर के बाद कृष्ण इस पूतना को मार डालेंगे, और क्योंकि भगवान के द्वारा पूतना का वध होगा इसलिए निश्चित भगवान के धाम में जाएगी, और भगवान के जब धाम में जाना होता है तो यहां से फ्लाइट निकलती है ऊपर के मार्ग में, और सूर्य और चंद्र दोनों ऊपर है, तो सूर्य और चंद्र के लोक में होकर वे फ्लाइट भगवान के धाम में जाती है। तब सूर्य और चंद्र ने सोचा कि ये पूतना इतनी बड़ी राक्षसी हमारे मार्ग से होकर जाएगी, इसलिए दोनों ने आंख बंद कर लिया कि हम इसे नहीं देखना चाहते। जो भगवान को मारने के लिए आती है हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए सूर्य और चंद्र भगवान की दोनों आंखें बंद हो गई, पूतना का दर्शन नहीं करना चाहते। सातवां भाव, आठवां भाव हरीशूरी करते हैं कि कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली। भगवान के नेत्रों ने सोचा यद्यपि पूतना के नेत्र हमारी जाति के हैं, अब पूतना के जो नेत्र हैं वही भगवान के नेत्र हैं, नेत्र नेत्र समान, पूतना के नेत्र में जो मटेरियल है वही भगवान के, पूतना के आंख भगवान के आंख, तो भगवान के नेत्र ने सोचा कि ये पूतना के नेत्र हमारी ही जाति के हैं, परंतु ये दुष्टा हमारी जाति की होकर भी ये कृष्ण को मारने के लिए आ रही है। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा पाप करने आई है। ऐसी पापनी से को देखने से अच्छा है कि आंख ही बंद कर लिया जाए, इसे देखा ही न जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब चौथी बात कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नेत्र की उपमा हंस के साथ की जाती है, राज हंस। भगवान के नेत्र को राज हंस कहा जाता है, भगवान के नेत्र हंस के समान है। और पूतना कौन है? बकी, बकासुर की बहन है। भगवान के नेत्र हंस के समान है और पूतना बकी, बगले के समान है। बगुला क्या करता है? अपनी चोंच को पानी में डुबा कर बैठता है और जैसे ही मछली आती है तो गप करके उसे खा लेता है। तो भगवान के नेत्र हंस के समान है, पूतना बगुले के, उसका नाम ही है बकी, अहो बकी एम स्तन कालकूटम। तो भगवान के राज हंसों ने सोचा कि ये बगुला कहां से आ गया। बगुला को देखकर वे राज हंस भगवान की आंखें बंद हो गई। कितना भाव हुआ? 9। दसवां भाव करते हैं, भगवान ने क्यों आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा कि यदि मैं आंखें खुली रखूंगा, यदि मैं मेरी आंखें खुली रखूंगा तो ये सोचेगी कि इतना छोटा बालक होने के बाद भी निडर है, ये डर नहीं रहा है। और यदि पूतना ने सोच लिया कि ये निडर है, डर नहीं रहा है, तो पूतना यहां से चली जाएगी, और पूतना वैसे ही चली गई तो मेरी लीला में त्रुटि रह जाएगी, ये लीला संपूर्ण नहीं हो पाएगी, इसलिए आंखें बंद कर लेना बहुत जरूरी है। 11वां भाव, भगवान ने सोचा कि मैं यहां पर लीला करने आया हूं, मैं यहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीला करने आया हूं, और लीला के ओपनिंग में ही स्त्री के साथ मुठभेड़ हो जाएगी। भगवान आए थे बहुत बड़े असुर इत्यादि लोगों का वध करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, और ओपनिंग ही स्त्री से हो रहा है। भगवान ने कहा ये ठीक बात नहीं है, ओपनिंग में ही किसी स्त्री को मारना, कोई बहुत बड़ा असुर होता तो ठीक था, मोरद ही स्त्री से करना ये ठीक नहीं है। ये सोचकर भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। चलो छोड़ो इसे। 12वां भाव देते हैं, कृष्ण के मन में एक बात आई। कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं इस पूतना के सामने करुणा भरी दृष्टि से देखूंगा, अब दो बात हो सकती है, भगवान या तो पूतना के सामने करुणा से देखे या तो द्वेष से देखे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं पूतना के सामने करुणा भरी दृष्टि से देखूंगा तो उसे कभी मारूंगा नहीं, ये कभी मरने वाली नहीं, और यदि मैंने पूतना के सामने उग्र दृष्टि से देखा तो ये तुरंत जलकर भस्म हो जाएगी। भगवान ने सोचा कि यदि आंखें खुली रखी तो लीला में बाधा हो जाएगी, ठीक से लीला हो नहीं पाएगी, इसलिए यह सोचकर भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। 13वां भाव दे रहे हैं, कृष्ण ने सोचा कि ये यहां पर आई है मां का रूप बनाकर, पूतना मां बनकर आई थी अपने कृष्ण को दूध पिलाने के लिए। भगवान ने सोचा कि ये धात्री के रूप में यहां पर आई है, और भले वे कैसे भी हैं, परंतु माँ का रूप बनाकर आई हैं, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए। चलो छोड़ देते हैं, ये सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। छोड़ो इसे। चौदहवा भाव देते हैं कि बड़े से बड़ा अनिष्ट भी योग से निवृत्त हो जाता है। यदि हमारे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना आती है, बहुत बड़ा कष्ट आता है, तो योग किया जाए। जितने लोगों को हार्ट अटैक आते हैं या पैरालिसिस हो जाता है, तो उसे योग करना चाहिए। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, रामदेव बाबा जो सिखाते हैं, हमारे जितने जो मोटे हो चुके हैं सबको रामदेव बाबा को फॉलो करना चाहिए। तो योग करने से सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। योग करने से सभी दुर्घटना से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण ने देखा कि मैं तो छह दिन का बालक हूं। मैं 6 दिन का बालक हूं और इतनी बड़ी दुर्घटना चलकर मेरे पास आई है, योग करना चाहिए। तो आपने देखा होगा, जब कोई योग करता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण योग करना चाहते थे पूतना से मुक्त होने के लिए, इसलिए योग करना प्रारंभ किए तो भगवान की आंखें बंद हो गई। 13वां भाव यह है कि योग करना चाहते थे इसलिए भगवान की आंखें। 14वां भाव, 15वां भाव देते हैं कि पूतना व्रज के सभी बालकों को मारने के लिए आई थी। भगवान ने सोचा कि जो मेरे सखा है, जो मेरे भक्त हैं, मेरे सखा और भक्तों को मारने के लिए यह राक्षसी आई है, ऐसी राक्षसी का मुख कभी नहीं देखना चाहिए। सत्य है, वैष्णव अपराध करने वाले का मुख कभी नहीं देखना चाहिए, उसे विमुख रहना ही अच्छा है। आगे 16वां भाव देते हैं, पूतना वंश बदल कर आई थी। यदि भगवान आंखें खुली रखे तो वे अपने मूल स्वरूप में आ जाती। पूतना वैसे राक्षसी थी परंतु गोपी का रूप बनाकर आई थी। यदि भगवान अपनी आंखें खुली रखे तो पूतना जैसी थी वैसे प्रकट हो जाती। भगवान ने सोचा कि कुछ देर के लिए ड्रामा करने देते हैं, ड्रामा करने आई है तो बिचारी कुछ देर के लिए ड्रामा। अब ड्रामा करने वाले को यदि ड्रामा नहीं करने दे तो वे नर्वस हो जाते हैं। आप देखो, कुछ लोग बहुत तैयारी करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं डायलॉग बोलने की, और स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, बहुत विचार करते हैं, रिहर्सल करते हैं, फिर ड्रेस पहनकर आ जाते हैं। फिर यदि कह दिया जाए कि बस अब समय नहीं बचा है, आपका ड्रामा कैंसिल हो गया, तो कितना दुख लगता है, ये विपुल प्रभु को पूछ लीजिए। तो ये पूतना भी ड्रामा करने के लिए आई थी। यदि भगवान आंखें खुली रखे तो सारा भेद खुल जाता और अपने मूल स्वरूप में आ जाती। भगवान ने सोचा चलो कुछ देर के लिए ड्रामा करने देते हैं, बेचारी को खुश करते हैं। आगे हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान पूतना का वध करना चाहते थे। यद्यपि भगवान जिसका वध करते हैं उसका वास्तव में वध नहीं, उसका तो उद्धार हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि इसका वध करना है और इसका वध करने में शक्ति लगानी है। तो जब कोई व्यक्ति शक्ति लगाता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो भगवान ने आंखें बंद करके अपनी सारी शक्ति पूतना के ऊपर लगा दी। इस प्रकार आचार्य गण भगवान श्री कृष्ण के आंख बंद करने के बहुत बहुत भाव देते हैं। तो पूतना नंद महाराज के गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच चुकी है, कृष्ण के सामने खड़ी है। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, फिर भी पूतना ने कृष्ण को अपने हाथों में वैसे ले लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अनजाने में स्वर्ग को रस्सी समझकर हाथ में पकड़ लेता है। मान लीजिए यहां पर कुछ बांधना हो कि बांधो, इस फोटो को बांधना है, लाइट चली गई और राम सिंह पर प्रभु रस्सी लेकर आए, हे रस्सी लेकर आया हूं, बांधो इसे, बांधो। लाइट आते ही पता चले अरे बाप रे बाप, ये तो सांप है। तब क्या होगा सबका? तो अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर जैसे कोई व्यक्ति आसानी से उसे उठा लेता है, वैसे पूतना समझ नहीं पाई कि ये सबसे बड़ा काल का भी काल है। कालोस्मि, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो काल के भी काल है उस कृष्ण को साधारण बालक समझकर पूतना ने वैसे ही पकड़ लिया जैसे अनजाने में कोई सांप को रस्सी समझकर पकड़ लेता है, पकड़ लिया। और पकड़कर वे पूतना कहते हैं जैसे म्यान में रखी हुई तलवार होती है उसी प्रकार पूतना कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगी। तलवार जब म्यान में होती है तब बहुत अच्छी लगती है, मखमल का कवर होता है उसके ऊपर डिजाइन होती है, परंतु अंदर बहुत धारदार वाली तलवार होती है। वैसे बाहर से पूतना म्यान के समान बहुत अच्छी लग रही थी परंतु अंदर तो मारने के लिए मारने का ही भाव था। कृष्ण को हाथ में लिया, यहां तक पूतना ने काम किया, फिर भी रोहिणी और यशोदा कुछ नहीं बोल सके कि क्यों मेरे पुत्र को उठा रही हो, क्योंकि इसका रूप ही इतना सुंदर था, कुछ नहीं बोल सके। वे तो अपने आप का सौभाग्य मानती थी, अरे बाप रे बाप, आज लक्ष्मी, आज साक्षात लक्ष्मी हमारे बालक को उठा रही है। और कृष्ण को उठाकर अपने स्तन से दूध पिलाना चाहती थी, तब तो यशोदा मैया धन्य हो गई, ये लक्ष्मी आज हमारे बालक कृष्ण को दूध पिलाए। कृष्ण को गोद में उठाया है और पूतना अपना स्तन कृष्ण के मुख में रखना चाहती, कृष्ण ने मुंह फेर लिया, कृष्ण दूध पीना नहीं चाहते थे, परंतु जबरदस्ती पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुंह में थमा दिया। अब क्या करें, पूतना की इच्छा ही थी कि ये कृष्ण मेरा दूध पिए। कृष्ण ने पहले तो बहुत इनकार किया, बहुत मना किया, परंतु जबरदस्ती जब कृष्ण के मुख में पूतना का स्तन रख दिया तब कृष्ण ने कहा, इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। भगवान कृष्ण दूध पीने लगे, दूध पीना प्रारंभ किया, पीते गए पीते गए पीते गए, पूतना के हृदय में जितना भी दूध था सारा दूध पी गए। प्रश्न होता है कि भगवान ऐसी असुरी का दूध पिए होंगे जो केवल मांस और दूसरों का खून पीती है, ऐसी स्त्री का दूध भगवान कभी पिएंगे, कभी नहीं पिएंगे। परंतु क्या पता, वो दूध तो खींच रहे थे, कहां डाल रहे थे वो कोई नहीं जानता है, अपने शरीर में नहीं डाले, कहीं और जगह पर डाइवर्ट कर दिया हो। पूतना के हृदय के सारे दूध को पी लिए और दूध को पीने के बाद पूतना के सारे खून को पी लिए, अब केवल पूतना के प्राण बचे थे। अब पूतना तो धीरे धीरे सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, अब तक तो उसके मन में था कि ये दूध पीते ही मर जाएगा, क्योंकि कालकूट नाम का विष था, कालकूट विष ऐसा है कि उसकी गंध भी यदि आ जाए तो बालक मर जाता है, और वह विष रूपी स्तन कृष्ण के मुंह में था, अभी मरा अभी मरा, लेकिन मरने का नाम नहीं ले रहा था। और पहले तो वे प्रसन्न हुई, दूध जब पी रहा था कृष्ण प्रसन्न हुई, परंतु धीरे धीरे जब सारा दूध समाप्त तो हो गया फिर तो खून पीने लगे, अब तो प्राण बचा था, कृष्ण प्राण पीने लगे। अब पूतना ने धीरे धीरे कृष्ण को छोड़ने का प्रयास किया, अरे छोड़, परंतु वे छूटी नहीं, कृष्ण छूटे नहीं, छोड़े नहीं। पूतना ने बहुत प्रयास किया कि अब ये मुझे छोड़े छोड़े, परंतु छूटे नहीं। तब पूतना ने कहा कि यहां पर यदि मैं कुछ करूंगी तो ये लोग को पता चल जाएगा। पूतना बाहर आ गई, घर के प्रांगण में निकल गई और बाहर आकर दौड़ने लगी। कृष्ण धीरे धीरे पूतना के सारा प्राण जब पीने लगे, जब सब कुछ सारी शक्ति को पी गए, तब पूतना अपना जो शरीर, अपना जो असली रूप था वो छिपा नहीं रहा, जो रूप बनाकर आई थी वे रूप चला गया और अपना विकराल शरीर धारण कर लिया। कहते हैं कि 8 माइल 12 कोस का शरीर था पूतना का, इतनी बड़ी असुरी का रूप धारण कर लिया और पूतना वहां से उड़ने लगी, कृष्ण को लेकर उड़ गई और कृष्ण ताले की तरह लटक रहे हैं पूतना के स्तन के ऊपर और पूतना के स्तन को छोड़ नहीं रहे हैं। पूतना कह रही है मुंचा मुंचा, अरे छोड़ अरे छोड़, परंतु कृष्ण छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक भक्त बहुत सुंदर लिखते हैं कि पहले तो कृष्ण पूतना के पास आना नहीं चाहते थे, ये जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ी, और जब कृष्ण ने पूतना को पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ना नहीं जानते हैं, ये कृष्ण का स्वभाव है। पहले तो किसी के हृदय में नहीं आते हैं, कृष्ण की भक्ति करने वाले बहुत कम लोग हैं, पहले तो किसी के वश में नहीं होते हैं और जिसके वश में हो जाते हैं तो फिर उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। ग्रह के तरफ पकड़ लेते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। जैसे शनि देव पकड़ लेते हैं किसी को तो फिर छोड़ते नहीं है, कृष्ण भी एक ग्रह के समान है, जिसको पकड़ लिया फिर किसी उसको छोड़ते नहीं है। चाहते हुए भी व्यक्ति भक्ति छोड़ नहीं सकता। इसलिए रूप गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि इस कृष्ण नामक ग्रह से बचना चाहते हो तो कभी वृंदावन मत जाइएगा। आप चाहते हो कि इस भौतिक संसार में अच्छी तरह से पत्नी और पुत्र से प्रेम करे और संसार के भोगों को भोगते रहे तो कभी वृंदावन में मत जाना, और यदि भूल से वृंदावन में पहुंच भी गए तो यमुना के किनारे मत जाना, और यदि यमुना के किनारे भी चले गए तो भूल से भी वे श्याम सुंदर त्रिभंग ललित विग्रह कृष्ण के सामने मत देखना। यदि एक नजर भी कृष्ण के सामने चली गई तो संसार में जीना मरना हराम हो जाएगा, ठीक से जी नहीं पाओगे। फिर तो गोकुल मथुरा वृंदावन में ही भटकते रहोगे, आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, संसार का आनंद नहीं मिलेगा। तो कृष्ण ग्रह के समान है, एक तो किसी को पकड़ते नहीं है और बाद में किसी को पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ते नहीं है, ये कृष्ण का स्वभाव है। पूतना करी अरे छोड़ मुंचा मुंचा छोड़, परंतु कृष्ण छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंत में उसका प्राण को पी गए और पूतना अपने प्राण को बचा कर नहीं रख सकी। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उड़ते उड़ते जहां पर कंस का बगीचा था उस लाइन में जब आ गए तब पूतना के सारे प्राण को खींच लिया और पूतना का प्राण निकल गया और धड़ाम करके उस कंस के बगीचे में वे गिर गए। आजू बाजू में गोप ग्वालों के भी खेत थे, भगवान ने सोचा कि ये हमारे खेत के ऊपर गिरेगी तो कई सारा नुकसान कर देगी, अच्छा है कंस के बगीचे के ऊपर ही इसे गिराया जाए, क्योंकि 18-20 किलोमीटर का शरीर था पूतना का। मान लीजिए पूतना का पांव राधा गिरधारी मंदिर के पास है तो उसकी मुंडी मलाड में होगी, इतना लंबा शरीर था पूतना का। इतना लंबा शरीर जब आकाश से पृथ्वी पर गिरा तो कहते हैं कि ऐसा आवाज आया, यह पृथ्वी वैसे हिल गई, लगता है जैसे वज्रपात हुआ हो, सारे ग्रह नक्षत्र तारे हिल गए, कांपने लगे, इतना विकराल शरीर था पूतना का। पूतना गिरी, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण गिरे, और भगवान श्री कृष्ण तो पूतना के स्तन के साथ खेल रहे थे, वे तो आनंद से झूम रहे थे। तो इस प्रकार से पूतना गिरी है, और गिरते ही जब आवाज आया तो ब्रज वृंदावन के गोकुल के सभी लोग सोचने लगे क्या हुआ। यशोदा मैया तो रोने लगी थी ये पूतना जब उसे लेकर गई, और सारी गोपियां सब लोग वहां पर आई तो देखा कि विकराल शरीर पड़ा है और उसके ऊपर कृष्ण खेल रहे हैं। तुरंत सभी गोपियां दौड़ कर गई और कैसे भी करके पूतना के शरीर के ऊपर चढ़कर उस बालक को ले लिया। देखिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सभी गोपियां गई और पूतना के शव के ऊपर चढ़कर कृष्ण को ले लिया। भक्तों इस संसार में कोई साधारण व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है ना तो स्त्री को उससे दूर रखा जाता है क्योंकि वे डर जाती है, इसलिए स्त्री को शमशान में कभी नहीं लेकर जाते हैं। स्त्री कभी शमशान में नहीं जाती है क्योंकि शमशान में उस मृत देह को देखकर उसे जलते देखकर उसका हृदय वे डर जाती है। तो यहां पर इतनी बड़ी राक्षसी है और मरी हुई है तो क्या गोपियों को डर नहीं लगा होगा, और वे गोपियां दौड़कर उसके शरीर के ऊपर चढ़ गई और कृष्ण को ले लिया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के लिए कृष्ण ही सबसे बड़े प्राण धन है। कृष्ण दुखी हो ये गोपियां देख नहीं सकती, कृष्ण का गोपियों का जीवन ही कृष्ण के लिए है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में बहुत सुंदर बात कहते हैं, मोर सुख सेवने कृष्णेर सुख संग में अतएव देह गेह दान, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए यदि यह देह, ये गेह, ये घर बार और ये शरीर भी यदि देना पड़े तो हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर पराण। कृष्ण ही मेरे जीवन है, कृष्ण ही हमारे प्राण धन है, कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, इसलिए कृष्ण के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। और कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हृदय उपरे धरो, सेवा कर सुखी करो, ये मोर सदा रहे ज्ञान। कहते हैं कृष्ण सदैव हमारे हृदय के ऊपर विराजमान रहो, हमारी सेवा को स्वीकार करते रहो और आप सभी दुखों से मुक्त रहो, नित्य निरंतर प्रसन्न रहो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। गोपियों का एक ही भाव है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। वे शव होते हुए भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कृष्ण को कैसे भी करके वहां से ले लिया, कृष्ण को ले लिया। और कृष्ण सबसे पहले देखा कि ये बालक ठीक तो, और वहां से लेके जाकर स्वस्ति वाचन करने लगी, स्वस्ति ना इंद्रो इत्यादि स्वस्ति वाचन करने लगी। फिर गाय की पूंछ, गाय और बछड़े की पूंछ कृष्ण के सिर के ऊपर घुमाने लगी। गाय और बछड़े की पूंछ को सिर के ऊपर घुमाने से सभी जो अविद्या होते हैं, असुरों का प्रभाव होता है, वह टल जाता है। इसलिए गाय और बछड़े की पूंछ को बालक के ऊपर घुमाना चाहिए। तो दुर्भाग्य के आज संसार में गाय कहां देखने मिलती है, कुत्ता जरूर दिखने मिलते हैं, गली गली में, घर घर में कुत्ते होते हैं और दरवाजे के ऊपर भी लिखा होता है सावधान, इस घर में कई सारे रह रहे हैं। कुत्ते के साथ रहकर लोगों का स्वभाव भी उसी के जैसा हो जाता है। कभी कभी पता नहीं चलता है कि कुत्तों से सावधान कर रहे हैं कि कुत्तों के साथ रहने वालों से सावधान। सावधान, सबसे सावधान रहना चाहिए, कुत्ते से और कुत्ते के मालिक से भी। गाय के पूंछ को घुमाने लगे, गंगा जल छिड़कने लगे, स्वस्ति वाचन किए और ब्राह्मणों को बुलाए गए, मंत्र पढ़ने लगे, कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। और अंत में यशोदा मैया ने सोचा कि कृष्ण यदि मेरे स्तन से दूध पिएगा तो निश्चित उसे कोई कुछ नहीं हुआ है। यशोदा मैया ने अपने हृदय स्तन से दूध पिलाया और दूध पीते ही कृष्ण को नींद आ गई, सो गए। कृष्ण सोए और उसी समय, ये रात की घटना थी, और भोर हुआ जब थोड़ा प्रकाश निकला उसी समय नंद बाबा गोकुल में पहुंच गए। नंद बाबा जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो इतना बड़ा शरीर, नजदीक से तो पहाड़ ही दिख रहा था, अब दूर से कुछ वो शरीर नजर में आ रहा था, नजदीक से नंद बाबा सोचे कि ये मैं मेरे गांव में आया हूं या दूसरे गांव में पहुंच गया। शरीर को देखकर तो नंद बाबा को ऐसा ही लगा कि लगता है भूल से दूसरे गांव में आ गए, परंतु आजू बाजू में जब गली इत्यादि सब देखा तो नहीं नहीं ये तो हमारा ही गोकुल है। जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो सभी लोग झुंड बना बना कर आए और नंद बाबा को कहने लगे, बाबा बाबा कल रात को बहुत भयंकर घटना हुई। नंद बाबा मन में सोचे कि वो ऋषि ने जो कहा था, कौन ऋषि, वसुदेव जी ने जो कहा था वे सत्य हुआ। नंद बाबा वसुदेव को ऋषि कह रहे हैं, क्यों? यद्यपि वसुदेव जी ने कोई त्रिकालदर्शी नहीं थे, वे तो जानते थे कि कंस ने भेजा है पूतना को, फिर भी नंद बाबा वसुदेव को ऋषि कर रहे हैं। ये ब्रजवासियों का स्वभाव है। देखिए ब्रज में पूतना आई तो ब्रज के लोग उसे लक्ष्मी मानने लगे। ब्रजवासियों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का स्वभाव है, जो नीच से नीच व्यक्ति होता है उसे भी बहुत बड़ा मानते हैं। ये भक्तों का स्वभाव होता है, और अभक्तों का स्वभाव क्या होते हैं, जो बड़े से बड़ा होता है उसे बहुत नीच मानते हैं, छोटा मानते हैं। नंद बाबा कहते हैं वो ऋषि वसुदेव जी ने जो कहा था सत्य निकला। सब ने कहा कि इस प्रकार से पूतना आई मर गए, अब क्या किया जाए। हे राजा, ब्रज के राजा थे नंद बाबा, अब क्या किया जाए इस पूतना का। तब नंद बाबा ने कहा कि इसको गाड़ने के लिए हमारे पास जमीन ही कहाँ है, इतना बड़ा शरीर थोड़ी हम गाड़ सकते हैं। एक काम करो, 1000 फरसू लाया जाए। फरसू जानते हैं, लकड़े को काटने के लिए होता। 1000 फरसू लाया जाए और 1000 गोप यहाँ पर इसके शरीर को काटने के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि इसके शरीर पूरा शरीर एक साथ जला नहीं सकते। तो फरसू से इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर फिर हम चिता बनाकर उसको जलाएंगे। वास्तव में हमारे भारत वर्ष में ये विधि है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसे अग्नि में जलाया जाता है, क्योंकि इस संसार में रहने वाले सब लोग संस्कृति वाले हैं, ज्ञानी हैं, जानते हैं कि आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर कुछ काम का नहीं है। परंतु जो आर्य संस्कृति में सनातन धर्मी नहीं है, वे लोग तो मरने के बाद इस शरीर को बहुत सजाते हैं। क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे सूट बूट टाई पहनाई जाती है, जानते कुछ लोग जानते हैं, परफ्यूम छिड़का जाता है, घड़ी पहनाई जाती है, बहुत सुंदर नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार पहनाकर उसे बहुत सुंदर वो पेटी में 10-15 हजार की तो पेटी होगी, क्या बोलते उसको, कॉफिन, तो वो तो 10-15 हजार की पेटी होगी, उसमें सुलाया जाता है। मैं पिछले दिनों 10 तारीख को गुजरात से जब आया तो बोरीवली में एक कथा चल रही थी भाई श्री रमेश भाई ओझा की, तो वहां पर एक चीज देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। बड़े बड़े राजकारण में रहने वाली गोपाल शेट्टी और सब माइक में स्टेज पर खड़े थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, हमने बहुत बड़ी सेवा शुरू की है, संसार में क्रांति लाना है और हम लोग ने एक क्रांति की है। क्रांति क्या हुई, मैं तो बैठ गया सुनने के लिए, ये लोग ने क्रांति क्या की। यहाँ पर कहा कि हमारे इस बंबई में सब लोग दुखी हैं। बोले ये तो सत्य बात है, शास्त्र के ज्ञाता है, सब लोग दुखी, पूरा जीवन दुख में बिताते हैं, तो कम से कम मरने की बात तो हम उसे सुखी करें। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना है, सब लोग हमारे माता पिता दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, कम से कम मरने के बाद तो सुखी हो। और उसके लिए हमने एक योजना बनाई है, योजना बनाई है। सब लोग ताली बजाने लगे, हजारों लोग बैठे थे। क्या योजना बनाई हमने, एक ऐसी वैन बनाई है, उस वैन में ओपन वैन है, एक ऐसा ट्रक जैसा था वो बाहर था, मैंने देखा फिर बाहर जाकर, एक ऐसा ट्रक था जो ट्रक की बोगी होती है उसमें छप्पर नहीं था, वैसे प्लेन था। तो उस ट्रक में एक कांच की पेटी थी। कहते हैं कि हमने जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए ऐसी वैन बनाई है, उससे उसको हम उसके घर से लेकर एयर कंडीशन में रखकर शमशान में पहुंचाएंगे। बेचारा जीते जी पंखा भी नहीं प्राप्त किया है, मरने के बाद तो एसी में उसे बिठाए। तो एक ऐसी वैन का निर्माण किया है, मरने के बाद आपको केवल फोन करना है, वैन आपके घर पर आ जाएगी और उसे ऐसी गाड़ी में रखेंगे और ऐसी में शमशान में लेकर जाएंगे, वे एयर कंडीशन का सुख लेगा। ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि आत्मा को निकल जाने के बाद ये शरीर कुछ सुख प्राप्त नहीं करता। और हम पूरे बंबई में जितने भी शमशान है सभी जगह पर ऐसी एयर कंडीशन वैन बनाएंगे और हम हमारे माता पिताओं को प्रसन्न करेंगे। और इसके लिए आपको जितना डोनेशन देना है यहां दे सकते, हजारों लाखों रुपया सब लोग ने डोनेशन दिया। भारत में रहकर भी इतना ज्ञान है, आश्चर्यचकित हो गया। मरने के बाद ये शरीर की कुछ वैल्यू, ये शरीर मट्टी बन जाता है, परंतु कुछ लोग इसे बहुत सजाते हैं और कहते हैं जब कयामत आएगी तब ये सब लोग खड़े होंगे। क्या खाक खड़े होंगे, भूत बनकर खड़े होंगे। भजन नहीं किया है तो खड़े होंगे परंतु भूत बनकर। ये सत्य है, ये आपके शूट बूट पहनकर आपके सामने नहीं आएंगे, भूत बनकर जरूर आएंगे। परंतु सनातन धर्म जानते हैं कि ये शरीर का मरने के बाद कुछ वैल्यू नहीं है, इसके लिए इसे जला देते हैं। विदेशों में तो हमने सुना है कि सबको मरने के बाद गाड़ने के लिए 6 फुट की तो जमीन चाहिए, बिना जमीन के कहाँ गाड़ेंगे, और एक के ऊपर एक किसी को गाड़ नहीं सकते, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। मेरे पिता के ऊपर आपके पिता को क्यों डाला, कई केस भी चल रहे कोर्ट में, इसलिए एक के ऊपर एक तो किसी को डांटा नहीं जाता है। और रोज कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। अब अभी अमेरिका और विदेशों में तो यह हालत है, मरने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। यदि किसी को मरना है तो मरने से पहले जमीन बुक कराना पड़ता है कि 6 फुट का जमीन 3x6 यहां पर मेरा जमीन बुक करो, तब जाकर गाड़ा जाएगा, नहीं तो वेटिंग लिस्ट। मर भी नहीं सकते बिना जमीन खरीदे, ये विदेशों की हालत है। परंतु भारतवर्ष में एक ही शमशान एक जगह पर हजारों को कोई जरूरत नहीं है। सिद्धांत को जानते हैं वसुदेव जी, इस बात को जानते थे और कहा कि इसे जलाना है, हजारों फर्शों से इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाए, इसको जलाया जाए। सब लोग उस काम धंधे में लग गए, 1-2 महीना बीत गया उसको काटने में और जलाने में। परंतु आश्चर्यमय बात यह है कि जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो जलाने से उससे अगरू की सुगंध आने लगी। अगरू जानते हैं, ये जो अगरबत्ती हम बोलते हैं ना, ये अगरबत्ती अगरू से बनती है। और अभी हमारे पास जो अगरबत्ती, उसमें 2-5% अगरू हो सकता है, बहुत कम अगरू ये लोग अगरबत्ती बनाने वाले डालते हैं। फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत तो अगरू डालते हैं। अगरू के अलावा गाय का गोबर इत्यादि हमारी भारत की अगरबत्ती में डालते हैं। परंतु एक बार हमारे गुरु महाराज लंदन या अमेरिका में यह प्रवचन कर रहे थे, और उस समय चाइना में रहने वाला एक भक्त गुरु महाराज के पास आया और कहा कि महाराज जी, आप जानते हैं हमारे चाइना में अगरबत्ती किससे बनती है, चाइना की अगरबत्ती। महाराज ने कहा नहीं, कहते हमारे चाइना में चाइना की अगरबत्ती सुअर के मल से बनती है। सुअर ऑलरेडी मल खाता है और उसके मल से अगरबत्ती बनती है और भगवान के सामने दिखाते हैं। परंतु भारतवर्ष में अभी भी थोड़ा बहुत अगरू इस्तेमाल करते हैं। वास्तविक अगरू तो हम कभी देखे ही नहीं, कभी सूंघे नहीं। पूतना के शरीर के जलने पर अगरू की सुगंध, प्रश्न होता है इतनी बड़ी राक्षसी के शरीर से अगरू की सुगंध कैसे आने लगी। अरे वे राक्षसी थी, परंतु भगवान कृष्ण ने जब उसका स्पर्श किया तब उसका सारा पाप समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण जिसे स्पर्श कर देते हैं वे तो मधुराति मधुर और परम पवित्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पवित्र है। भगवान का नाम ही जीवों को पवित्र कर देता है। वह साक्षात भगवान जिसको स्पर्श करे वो पवित्र क्यों नहीं होगा। पवित्र हो गई थी इसलिए पूतना के शरीर से अगरू की सुगंध, बहुत बड़ा धुआं निकला। संसार के लोग सोचने लगे कि सुतल लोक में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं या इंद्र यज्ञ कर रहे हैं, इतना धुआं कहां से आ रहा है। यह धुआं पूतना के शरीर का था। पूतना को जलाए गए और एक अंतिम बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध तो किया, शरीर का वध किया, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को अपने धाम में भेजा। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी मां बना लिया। देखिए भगवान कितने कृपालु है। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम झिंगा सया पायतपि साध्वी लेभे गतिम दात्री उचिताम ततोवयम कमवा दयालम शरणम व्रजेम। जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, मर्डर करने आई थी, परंतु कृष्ण ने पूतना को अपनी धात्री अपनी मां बनाकर अपने धाम में भेज दिया कि नित्य लीला में मेरी मां बनती रहो और मुझे दूध पिला दी। प्रश्न होता है कि इतनी बड़ी असुरी को कृष्ण ने पूतना को मां क्यों बना लिया। इसका एक ही कारण है, पूतना भले कुछ भी भाव से आई थी, कैसे भी भाव से कृष्ण को मारने के लिए आई थी, परंतु वे जो वस्त्र पहनकर आई थी वे वस्त्र की मर्यादा है। गोपी का वस्त्र पहनकर गले में कंठी और कपाल में तिलक करके आई थी। भगवान ने देखा भाव भले कैसा भी हो, वस्त्र मेरे भक्त का है, गोपी वस्त्र है और गले में कंठी और बाल में तिलक है, इसलिए निश्चित मेरा पार्षद बनने के लायक है। बना लिया पार्षद। भक्तों हृदय में कुछ भी भाव हो, परंतु यदि हम वैष्णव ड्रेस पहनते हैं, कंठी और तिलक धारण करते हैं और चलकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित भगवान हम पर कृपा करते हैं। भगवान ने यह नहीं देखा कि ये मुझे मारने के लिए आई थी इसलिए इसे नरक में भेजो, नहीं ये चलकर वृंदावन गोकुल में आई है और गोपियों का वस्त्र वैष्णव आभूषण पहनकर आई है इसलिए मेरी माँ बनने के लिए। कृष्ण ने पूतना को अपनी माँ बना लिया। तो भगवान श्री कृष्ण अनंत अपार असीम कृपालु है और भगवान की कृपा से और कौन कृपालु हो सकता है। इसलिए उद्धव जी ने जब इस बात को सुना उसकी आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा बहने लगी। इतने कृपालुता की भी हद होती है। आपके सामने रिवॉल्वर लेकर कोई आए और कहे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा काट डालूंगा, तब आप कहो कि नहीं आप तो हमारे पिताजी हो हमारी माता। डर के मारे भले कोई कह सकता है परंतु हमें मारने वाले को हमारा ही मर्डर करने वाले को हम माँ और बाप बना ले ये कभी हो नहीं सकता। अरे एक गाली भी दे देता है तो जीवन भर उसके साथ हम द्वेष करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक थप्पड़ भी मार देता है तो जीवन में कई बार उसके सामने मुड़कर देखते नहीं है। ये मारने के लिए नष्ट करने के लिए आई थी उस पुतना को माँ बना लेना ये तो भगवान ही कर सकते हैं। भगवान में ही इतना सामर्थ्य है। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन की उम्र में पुतना का वध किए। वध क्या किए, पुतना को अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। तो इस प्रकार ये पुतना की लीला है। जो व्यक्ति इस पुतना की लीला को सुनता है वे सभी आसुरी प्रभाव से मुक्त हो जाता है, ये इसकी फलश्रुति है। और इतना ही नहीं भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे।